ओम शांति। आज सवेरे बहुत सुंदर एक सेशन अटेंड किया। बैठ जाए बैठ जाए, सभी बैठ जाए बहने। राजयोग में ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सेशन है। इससे पहले मैं राजयोग को एक तरफ रखे, आज के दुनिया में, आज के तारीख में, सारी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया कहीं भी जाए, हम सब, आप सब भी, हम सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कोरोना नहीं, वो प्रॉब्लम ये, दो इंसान लंबे समय तक एक साथ शांतिपूर्वक प्यार से रह पाना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों को समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है और इसीलिए ब्रेकअप्स बहुत हो रहा है। इंसान इंसान से भाग रहा है, पता नहीं क्यों। और ये सबको ये बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल गई है मोबाइल के। अब आमने सामने आंखें मिला करके बात कौन करेगा भैया? मैसेज भेज दो, शांति। वो जब देखेगा देखेगा मेरे तरफ से मेरी जिम्मेदारी पूरी है जी। मैं तो बोल सकती हूँ, देखो भैया हमारे पास एविडेंस है, हमने भेजा हुआ है आपको, मैसेज भेजा हुआ है, आपने नहीं देखा तो हमारी कोई वो। तो परिवार के अंदर भी बच्चे, माता पिता, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, हस्बैंड वाइफ, ये बड़ा। और ऑफिस में जाए जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, बॉस है, सबके साथ मिलकर, चाहे स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, लोगों के साथ मिलकर काम कर पाना, लोगों के साथ मिलकर रह पाना, बड़ा दिक्कत हो रहा। सही बात है, क्योंकि पता नहीं लोग बदलते रहते हैं। जो आज उनको अच्छा है कल उनको अच्छा पसंद नहीं है। जो बात आज मैंने कहा आपको बहुत पसंद आया, वही बात कल कहा आपको पसंद नहीं आया। तो पता नहीं क्या बदल रहा है, क्यों इंसान के मन इतना बदल रहा, क्यों इंसान के मन इतना फ्रजाइल, इतना नाजुक बनता जा रहा कि रिश्ते टिक नहीं पाते। और सारी जिंदगी में रिश्तों का बड़ा इम्पोर्टेंस है। बगैर रिश्ते की जिंदगी नहीं है, रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट है। संबंध जो है जरूरी है इंसान को। अच्छा, ये क्यों ये सब गड़बड़ है? राजयोग हमें एक दुनिया से, आपके कारोबार से, आपके गृहस्थी से दूर लेके जाने की बात नहीं है। आप गृहस्थी में रहते, गृहस्थी बनकर घर बार में रहते, शांतिपूर्वक संबंधों को निभाते कैसे चले, यही सिखाता है। छोड़ना कुछ नहीं है हमें। अब ये क्यों नहीं बन पा रहा? फर्स्ट थिंग जो आज आपने सवेरे सुना, व्यक्ति को अपने आप के साथ का संबंध बनाना नहीं आ रहा। आपको ताज्जुब लगेगा, ये क्या बात हुई, अपने आप के साथ संबंध क्या होता है? संबंध माना दो लोग होते हैं ना, एक मैं एक आप। अब मैं अपने साथ क्या संबंध बनाऊं? जी हाँ, यही तो हमें जानना है। शायद आप ये बात सवेरे जाने होंगे, व्यक्ति के अंदर एक बहुत सुंदर संसार है, एक बहुत सुंदर, बहुत मीठी, ऐसे शक्तिशाली एक व्यक्तित्व हर इंसान के भीतर छिपा हुआ है। हम इधर उधर 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 लोगों को देखते 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 हम ये भूल ही जाते हैं, अरे मेरे अंदर इतनी सुंदर चीज है, मेरा अपना जो व्यक्तित्व में ऊपर से जब आई तो बहुत सुंदर, बहुत मीठा और बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व लेकर के मैं चली, और मैं ये रंग रूप को देखते देखते, ये चमड़ी देखते देखते अंदर का वो व्यक्तित्व को हम भूल ही गए। तो मेडिटेशन योग का पहला स्टेप, क्यों हम दूसरों के साथ दूसरों की बात नहीं समझ पाते, दूसरे हमारे दिल को नहीं समझ पाते, हम बात करते हमारी बात का मतलब लोग अलग ही निकालते हैं, मेरी बात आप समझो, अरे ना समझो तो कोई बात नहीं पर गलत तो ना समझो, अंडरस्टैंड ना करो तो कोई बात नहीं पर मिसअंडरस्टैंड तो नहीं होनी चाहिए ना, पर यहाँ एक बात चार बार बोलने पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग होते जाते हैं, मैं जिसकी अच्छा करना चाहते वो मेरे को गलत समझते, एकदम या कंफ्यूजन है, कैसा जीना है, बच्चों को कैसा क्या बोले, बड़ों को क्या बोले, बड़े छोटों को क्या बोले, इसलिए हर इंसान के भीतर जो ना इमोशंस ब्लॉक हो गया है, हम खुल के जी नहीं पा रहे हैं। इंसान इंसान के बीच का संबंध कहीं ना कहीं दरारें तो हो ही रहे पर दीवार भी बनना शुरू हो गया। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप के साथ का जो वो सुंदर व्यक्तित्व के साथ हमें संबंध जोड़ना पड़ेगा। और हमने संसार के सारी बातों को जान लिया, सब कुछ हमने जाना, मगर एक को न जाना। संसार में आपने सब कुछ पा लिया पर एक चीज को नहीं पाया, मैंने जिंदगी शून्य ही रहेगा। मान लीजिए 0000 जितने भी जीरो डालो उसका कोई वैल्यू है, पर एक जीरो के पहले एक डालो, वन के बाद जीरो डालो तो फिर वो क्या हो जाएगा, हा? एक के बाद जीरो शून्य डालेंगे वो शून्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो शून्य के साथ एक है इसलिए वो दस हो जाता है। वो एक के बाद जितना शून्य होंगे फिर उसके हर शून्य का वैल्यू बढ़ता है। इसी तरह हमने जीवन में सब कुछ पा लिया, सब लोग सब कुछ देख लिया, पर फिर भी मन कहीं ना कहीं तृप्त नहीं है, अतृप्त है, मन में खुशी नहीं है। कईयों के जीव में एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, कईयों के मैं आप देख रहे ना, कई आप में से कई लोग ना खुश है, जिसको डिप्रेस्ड भी कह सकते हैं। ऐसे ही आपको देखने से भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, आप खुश हैं, हाँ है ना, बहुत खुश है, कौन बहुत ज्यादा खुश है, हाथ खड़ा करेंगे, हमेशा खुश कौन है, हाथ खड़ा करो, खुश तो हमेशा ही रहते हैं ना, हमेशा खुश नहीं है कोई। एक बात आप, एक बात कोई कोई किसी ने आपको कह दी, आपका मन खुश रहेगा, अब बताओ, अब बताओ, आपके साथ कोई कुछ ऐसा व्यवहार कर दे, कोई कुछ ऐसा बोल दे, फिर भी आप खुश रहोगे, अब उठाओ हाथ, देखा एक बंदा नहीं उठा रहा, कहां गई ज्ञान, खुशी वो नहीं होती। हर बात में हर परिस्थिति में क्या भी हो रहा हो, कैसा भी हमारे साथ कोई करता हो, हमारे अनुसार कोई चलता हो, हमारे अनुसार कोई ना चलता हो, तब भी मन खुश, उसको कहते खुशी है, ऐसी खुशी। अब उठाए कौन हमें खुश है, कौन खुश है, हाथ खड़ा कर, सी ये है कहानी, ये हमारी कहानी है, ज्ञान ध्यान जब तक है जब सब कुछ अच्छा रहेगा, जब ज्ञान ध्यान खत्म हो जाएगा, जब परिस्थिति आती है सब भूल जाता है, पूजा पाठ सब भूल जाता है। हम तो मुस्कुराना भी भूल गए हुए हैं, चेहरे सबका लटका हुआ पड़ा है, हवा उड़ रहा है। भगवान भी देखा मेरे बच्चों की ये हालत है, इसलिए बोला भाई मास्क लगा दो ताकि दिखाई ना दे कि आप दुखी हैं। चेहरा आधा तो ढका रहेगा। हाँ, तो ऐसा ही ऐसी उदासी की जिंदगी चलती रहे, हो सकता है पूरा चेहरा ढक के चलना पड़े, फिर भी अभी आंखें तो दिखती हैं, आंखों से तो आपके भाव सब व्यक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही उदासी की जिंदगी चलती रही तो फिर आंखों में भी पट्टी लगाना पड़ेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ जी, इसलिए वो एक है परमात्मा के साथ हमारा संबंध। एक परिवार है मान लो, उस परिवार में माँ बाप बच्चे हैं। यदि माँ बाप के साथ बच्चे संबंध नहीं रखते हैं, अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, वो बच्चे कितने भी ऊंचे स्तर पर उठ जाएंगे, उनके परवरिश माँ बाप से नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में अधूरापन जरूर रहेगा। वो कोई भी हो, कितने भी उनके पास धन हो, दौलत हो, वो पोस्ट हो, जो भी है, क्योंकि उनके माँ बाप के साथ उनका संबंध नहीं ठीक है। इसी तरह हम सब आत्माओं के पिता है, माता है, उनके साथ हमारा तो संबंध कब से कट चुका, तो हम खुश कैसे रहेंगे? परवरिश तो उनसे मिलेंगी ना आत्मा को। छोटे बच्चे जो होते हैं वो माँ खिलाती है ना, माँ से उनको पालना मिलती है ना। वो बच्चा जब गर्भ में भी होता है वो माँ के द्वारा उस बच्चे को पूरा परवरिश मिलता है ना। वो माँ के साथ ही उस बच्चे का संबंध नहीं रहा अंदर में, तो वो तो फिर कैसा वो जिएगा अंदर, बाहर आने के बाद भी जिएंगे कैसे? इसी तरह हम सबके भी, हम चल तो रहे हैं, हम ये रंगीन दुनिया में रंग को देख करके अल्पकाल खुश बेशक हो जाते हैं, पर अपने दिल पर हाथ रख के देखेंगे मेरी जिंदगी में जैसी परिस्थिति है, परिस्थितियां हैं, और जैसे लोग हैं मेरे आसपास, जिस तरह की जिंदगी है मेरी, हम खुश नहीं है। खुश ऐसा भी नहीं कह सकते हम खुश नहीं है, दुखी भी नहीं है पर खुश भी नहीं है। हैं जी, वो अंदरूनी जो तृप्त द स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट, वो नहीं रही। तृप्त समझते हैं? हाँ, संतुष्टि समझते हैं आप? ठीक है, सब ठीक ठीक है, बट अंदर से एकदम उमंग उल्लास से जिंदगी जीना है, वो नहीं है। कईयों के आंखें देख करके मुझे समझ आता है कि नॉट गुड। हम बोलेंगे नहीं, मैं उठा सकती हूँ कौन कौन डिप्रेस्ड है, पर मैं बोलूंगी नहीं, पर है जरूर। सिर्फ एक छत के नीचे रह जाना, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमना ही जिंदगी थोड़ा ही है। मन भी तो कोई चीज होती है, दिल भी तो कोई चीज होती है। उस दिल को भरने वाला, उस दिल को सुरक्षित रखने वाला, वो दिल वाला परमात्मा है। मन बुद्धि आत्मा में ना, आज सुना ना आपने, वो मन बुद्धि को ठीक तो आत्मा ठीक, आत्मा को ठीक रखने वाला तो परमात्मा है। और यदि हमने उनको नहीं जाना, उनके साथ हमने संबंध नहीं जोड़ा, तो फिर कैसे चलेंगे? अब आप सबके पास मोबाइल्स है, आप सारा दिन बात करते रहो बात करते रहो बात करते रहो, पर एक समय ऐसा आएगा कि उसका सारा जो बैटरी है लो हो जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ है ना, आप एयरपोर्ट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, सबसे पहले आप सीट के पास देखते हैं प्लग है, तो हर जगह प्लग दिया हुआ होता है जहां प्लग इन करो। तो अभी आत्मा इतने जन्म से हम कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं, लोगों के साथ हमारे संबंध हमारे जुड़ गया। हाँ, एक दिल हजार टुकड़े हो गए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, हालत ये हो गई। तो अभी प्लग इन हमने किए नहीं, आत्मा को चार्ज एकदम डिस्चार्ज की स्थिति में है। अब प्लग इन करना हमको मालूम नहीं कहाँ करे, तो मन को भी चार्ज करना जरूरी है ना। आप तीन वक्त खाना खाते हैं ना, हाँ जी। अभी आप लंबे समय तक खाना ही नहीं खाओ, पौष्टिक आहार नहीं करो, नहीं खाओ तो कमजोरी आती है ना। इसी तरह मन को पौष्टिक आहार नहीं देंगे, मानसिक रूप से भी हम कमजोर हो जाते हैं। आजकल के जो जनरेशन के खास करके बच्चे हैं, बड़े भी मैं कह सकती हूँ, मन से बहुत कमजोर है। ये जो बच्चे हैं ना, बड़े मन से बड़े कमजोर है। एक बात सहन नहीं होती है, एक थोड़ा ऊपर नीचे नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंदर से इतनी ताकत तो है ही नहीं। अचानक गुस्सा आ जाना, अचानक वो हो जाना, ये क्या जिंदगी है? गुस्से आवेश नाराजगी, ये तो मौत है। हम तो जीना शुरू भी नहीं किए हैं, मैं वैसे कहूं तो। यदि यहां पर दिल में खुशी नहीं है तो जिंदगी नहीं है और मौत के समान है। किसी से नफरत दिल में भर के जीना, किसी से दुश्मनी मन में लेकर के जीना, ये जीना नहीं है, इसको मौत कहते हैं। मौत से भी बदतर, बल्कि मौत तो एक बार मर जाते हैं ना, खत्म बात। पर ये तो जीना भी है, पर इस तरह से जीना, दैट्स नॉट लाइफ। लाइफ एक बहुत सुंदर संबंध, बहुत सुंदर संबंध में बहुत सुख होते हैं। संबंध शब्द ही सुख से जुड़ी हुई है। जिंदगी बड़ी बड़ी, और इंसान है हम, बहुत सुंदर जीवन है ये, पर इस जीवन का क्या हाल बना रखा है देखिए। आपने, आप लोगों के घर में आईना है, किस किस के घर में फुल मिरर है, फुल साइज मिरर देखते हो रोज, हाँ? तो देखो, हाल देखो क्या बना रखा है जीवन, ये नहीं खुद का। फुल साइज मिरर के सामने खड़े होकर के पूछो, हे क्या हाल बना रखा है, इज दिस द लाइफ, ये है जिंदगी, इसलिए हम आए थे, इस तरह की जिंदगी जीने आए थे। तरस आएंगे, खुद पर तरस आएंगे, क्या मेरा मन का हालत हमने बना रखा। इसलिए हमारी जिंदगी में अब तक हमने जो भी हुआ, जो भी किया, जैसा भी हो गया, फिनिश। अब के बाद रही हुई जिंदगी हम बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी हर पल को सेलिब्रेट एंजॉय करके जीने के लिए बहुत सुंदर युक्ति परमात्मा, जो हम सबके पिता हैं, दोस्त हैं, वो हमें सिखाते हैं। और एक बार 000 के साथ इस वन को जुड़ेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। अंदर से आपको एक फुलनेस फील होगा, भरपूरता महसूस होती है। अब सब कुछ होते भी खालीपन, सबके साथ होते भी अकेलापन, अपनों से पता नहीं कौन अपना कौन पराय, समझ ही नहीं आ रहा। अपने घर में भी कई लोग पराय की तरह ही रह रहे हैं। कौन हमसे प्यार करता, कौन हमको समझ रहा है, कौन हमसे दुश्मनी करता, कुछ समझ में ही नहीं आता। जीवन समझ नहीं आता भैया, बड़ा नहीं समझ आता, है ना? ऐसा है ना, है या नहीं? ऐसा हमने बना लिया हुआ है। इसलिए संबंध हमें उस एक के साथ जोड़ना है। हमारी जिंदगी में जो बहुत सारे शून्य हैं, उसके साथ इस एक को जोड़ना जरूरी है, और वो एक है। परम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हो, स्टार हो, लाइट हो, शरीर के माता पिता हैं, बंधु सब हैं, सब कुछ है, पर आत्मा का कौन? जैसे मंदिर में जाते हैं ना, हाथ जोड़ के कहते भगवान आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, हम झूठ बोल रहे हैं, आपके तो सब हैं ना, तो क्यों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने ये कहते आपके सिवाय हमारे कोई नहीं, आप ही हमारे रखवाले हैं? तो रोज झूठ बोल रहे हैं हम भगवान के साथ, झूठ बोल रहे हैं, झूठ है, हाँ या ना? आपको पता ही नहीं है, हमको सिखाया गया, हम बोलते हैं जो बोलने को बोला हमने बोल दिया, झूठ है, सच हमको कुछ नहीं पता, ऐसा भी कहीं होंगे, पर ये झूठ की बात नहीं है, अनजान अज्ञानता जिसको कहते हैं, जो हम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है, वो सच है, क्योंकि यहां भगवान के सामने हाथ जोड़ करके मैं आत्मा खड़ी हूं, आत्मा की आवाज है वो, आत्मा की पुकार है वो, क्योंकि आत्मा के लिए माता पिता बंधु सखा सर्वस्व वही है, बाकी ये जो है बहुत लंबे चौड़े जो संबंध दुनिया में हमने बना रखा है, जिस दिन से आत्मा शरीर में प्रवेश करके वो बाहर निकलती है, जन्म जिसको कहते हैं, बहुत सारे शरीर के साथ उस संबंध जुड़ जाता है, नाता जुड़ जाता है, और इस इन नातों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, असली जो हमारा संबंध है, नाता जिनके साथ है, जहां से हम आए हैं, वो तो भूल ही जाते हैं, फॉरगॉटन टोटली। इसलिए योग माना याद, योग माना कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई वो नहीं, योग माना याद करना बस, और कुछ नहीं। क्या याद करना? जो हम भूल गए थे कि मैं आत्मा हूं, भूल गए, मैं शांत स्वरूप हूं, भूल गए, मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, भूल गए, तो जो बात भूल गई है उसको याद करना ही योग है। और ये सॉरी, सबसे पहला परमात्मा के लिए दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक है परमात्मा सत्य है, और एक और शब्द कहते हैं परमात्मा प्यार है, गॉड इज लव, लव इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा सत्य है, सत्य स्वरूप को परमात्मा कहते हैं, और प्यार का सागर है परमात्मा। ये दो शब्द दुनिया वाले भी, जिनको ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान नहीं है, वह भी यूज करते हैं। अब ये दो शब्द का अर्थ क्या है? जीवन में जीवन का जो आधार है इंसान के, वो प्यार है, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल प्यार, जिसमें कोई कंडीशंस ना हो, तुम ये करेंगे तो मैं ये करूंगी, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसा कोई कंडीशंस ना हो जिसमें, ऐसा प्यार। पर दुनिया में तो कंडीशंस है ना, आपका बच्चा भी तो कंडीशंस तो देता है ना, आपके माँ बाप भी आपके कंडीशंस रखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको साइकिल मिलेगा, हाँ जी, और बच्चा भी कहता है आप मेरे को आइसक्रीम ला के देंगे तो मैं पढ़ूंगा, मेरे को 2 घंटे टीवी देखने देंगे तो मैं पढ़ूंगा, वो भी कंडीशन रखता है। पति पत्नी के बीच में भी कंडीशंस है, हाँ, भाई भाई के बीच में भी कंडीशंस है, दोस्त दोस्त के बीच में भी कंडीशंस है, दोस्त भी, फ्रेंडशिप, ऐसा कोई अनकंडीशनल फ्रेंडशिप दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए आत्मा के अंदर वो अतृप्ति है, जन्म जन्म के जो दर्द दुख को मिटाने वाला वो सच्चा प्यार है, जो परमात्म प्यार है, जिसको अंदर से एकदम सुकून मिलेगा, वो कोई इंसान दे ही नहीं सकते। और जिसको दुनिया वाले प्यार समझते हैं, वो देह को देख करके प्यार समझते हैं, आपके दिल को आपके मन को देख कौन देखता है आजकल? कोई है इंसान आपको दिल को देखने वाला? सूरत को देखते, आपके कपड़े देखते हैं, आपने क्या आभूषण पहने वो देखते हैं, उस पर फिदा होते हैं। हाँ जी, बाकी आपके दिल को देखा, आपकी आत्मा को देखा, आपके वैल्यूज को देखा बहुत कम, ना के बराबर। पर परमात्मा तो ये देह को नहीं देखते, देह के ऊपर की चीजों को नहीं देखते, आपके दिल के भीतर जो अच्छाई है वो देखते हैं, और उस अच्छाई को दुआई देते परमात्मा, क्योंकि वो पिता है ना, इसलिए हर एक परमात्मा से प्यार करता है, चुंबक है, he's like a magnet, you know, he pulls, वो पुल करता है हर आत्मा को, हर इंसान को। और वो परमात्मा है, ये भ्रांति है, आपको क्या क्या लगता है, असली में परमात्मा है या हमें यूं ही सोच रहे हैं, है ना, आत्मा है या यूं ही सोच रहे हैं, कौन है आत्मा, आत्मा कहाँ है जी, ये मैं आत्मा हूं, ब्रकटी के बीच में, जब मैं आत्मा हूं ये सच है, तो परमात्मा है ये भी सच है। ओनली थिंग हम देख नहीं पाते हैं, और जरूरी नहीं है जो नहीं दिखता है वो नहीं है। आपको सिर में दर्द है, मान लो है, अब मुझे तो नहीं दिखता, इसका मतलब थोड़ी आपको दर्द नहीं है। आपको भूख है, है पर दिखता है नहीं, इसका मतलब अब ठंड है, अब दिखता है नहीं दिखता, इसका मतलब थोड़ी की ठंड नहीं है, ठंड तो है। वैसे दिमाग भी तो नहीं दिखता, पर इसका मतलब थोड़ी दिमाग नहीं है, सबके दिमाग दिख रहा है नहीं दिखता है, उसके अंदर बुद्धि कितनी है वो दिखता है नहीं दिखता, पर ऐसा थोड़ी कहेंगे फिर इसके अंदर कुछ है ही नहीं। जरूरी नहीं है दिखने वाली चीज सत्य है। अब दूसरी बात आते, सत्य, ट्रूथ, परमात्मा सत्य। अब सत्य मतलब क्या, सत्य में दो चीजें हैं, एक है पार्शियल ट्रूथ, एक है इटर्नल ट्रूथ। अब ये शरीर जो है ये दिख रहा है ना, हम हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये शरीर है। अब ये शरीर है तो ये सत्य है, ये संपूर्ण सत्य है, अधूरा सत्य है, ये सत्य नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, ये शरीर सत्य है नहीं है, पर ये संपूर्ण सत्य नहीं है, इटर्नल ट्रूथ नहीं है, अविनाशी सत्य नहीं है, क्योंकि ये शरीर अब है, कल नहीं था, कल नहीं होगा जी, अब है, कल का भरोसा नहीं है, पर कुछ साल पहले ये था भी नहीं, इसलिए अधूरा सत्य इसको कहते हैं, पार्शियल ट्रूथ। लेकिन परमात्मा जो है वो इटर्नल ट्रूथ है, यानी कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेंगे, अविनाशी परमात्मा ही है जो अविनाशी सत्य। आत्मा अविनाशी सत्य है, आत्मा के एग्जिस्टेंस अविनाशी सत्य है, लेकिन आत्मा के गुण जो है, जैसे जैसे हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, पतित होते हैं, कब पावन होते हैं, आज अच्छा है कल बुरा है, आज बुरा है कल फिर वो अच्छा हो जाएगा, तो गुणों में परिवर्तन होता जाएगा। अब आपने आंखों से देख लिया, लेकिन उनको पहचाना नहीं, उनको समझा नहीं, तो देखने से कोई फायदा नहीं। इसलिए परमात्मा को इन आंखों से देखने की बात नहीं है, देखा भी, मान लीजिए स्वयं भगवान आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आप समझोगे ये भगवान है, समझ नहीं, तो समझ से जानना, समझ से पहचानना सही पहचान है। मैं आपको कहानी सुनाती हूं, कई लोगों को नींद आ रही है, जल्दी उठने की आदत नहीं है ना, किस किस को नींद आ रही है, हाथ खड़ा करो, हाँ, जो सो रहा है वो हाथ खड़ा करेंगे, जो जाग रहा है वो तो जाग ही रहा है, जो सो रहा है वो हाथ खड़ा करो। हाँ चलो, मैं एक आपको एक कहानी सुनाती हूँ ताकि आपकी नींद जग उठ जाए, जग जाए। एक युवक था, छोटा सा बालक। वो एक्चुअली आई थिंक ये रियल स्टोरी है। उसको आंदोलन के समय में महात्मा गांधी जी से मिलने का बड़ा उसको तमन्ना था। तो उसको लगा कि आसपास में कहीं वो गांधी जी आ रहे हैं। वो कभी देखा नहीं था तो, पर उसको लगा हम मिलेंगे, मेरी जिंदगी का जो उद्देश्य है वही उनसे मिलना, एक बार मिलना, हाथ मिलाना उनसे। तो उनको लगा आसपास कहीं गांव में वो आ रहे हैं। तो चढ़ गया, ट्रेन चढ़ गया, चल पड़ा। और उन दिनों में वो ट्रेन ऐसे वो नहीं होता था ना, भरा भरा ऐसा नहीं होता था। तो थोड़ा समय वो गए, एक और एक बुजुर्ग व्यक्ति उस कंपार्टमेंट में आके बैठे। तो वो अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था कि अब मैं जाऊंगा, गांधी जी से मिलूंगा, क्या बात करूंगा, वो कैसे लगेंगे, क्या होगा, क्या, यही ख्याल उसके मन में बार बार आता रहा। और बस, और वो बुजुर्ग कोई व्यक्ति चढ़ा और वो बैठे। वो बीच बीच में वो बुजुर्ग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ जा रहे हो बच्चे, जरा पानी ला दो, आप क्या कर रहे हो, क्या नाम है। वो उस बालक को बड़ा चिढ़ लगता था, भाई तुम मेरे को छोड़ो ना अकेला, आपको जो पीना खाना कहते ले लो, तुम रहने दो मेरे को, शांति से बैठने दो, मैं अपने ख्याल में खोया हुआ हूँ, मैं खुश हूँ। पूरा सफर वो बीच बीच में वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता रहा, करता रहा, पर इसको बड़ा चिढ़ आता था, ये क्यों मेरे को डिस्टर्ब करता है, मेरे को यू जस्ट लीव मी अलोन। पर तो आया, आखिर स्टेशन आया तो उसको वो अंदर बड़ा हो रहा था, एक्साइट हो रहा था कि अब मैं जाऊंगा। जैसे गाड़ी रुकी, वो आवाज सुनी महात्मा गांधी की, जय हो जय हो। उसने कहा जय हो, इसका मतलब इसी गाड़ी में है। तो वो बाहर झांकने लगा तो सारी भीड़ जो है जय जयकार करने वाले उसके डब्बे के सामने आके खड़े हो गए। और ये बुजुर्ग व्यक्ति नीचे उतरे और मालाएं लोगों ने डाली। इस बालक को लगा, अरे क्या मेरी किस्मत, जिस व्यक्ति से मिलने जाना था वो मेरे तो साथ ही बैठा हुआ था, इसके साथ में सफर को वो बांध के वो मेरे से बात करना चाह रहा था। बार बार मैंने उनको धुतकारा, उनको मेरे को पसंद नहीं लगा, इग्नोर किया, मेरिटेट, चिड़चिड़ा हो गया कि क्यों मेरे से बात कर रहा है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ, क्या बात हो गई। हमारी भी यही है, भगवान आके खड़ा भी हो जाए, हमने पहचाना नहीं उस भगवान को, जिंदगी फिर यूं ही असफल रहेंगे। तृप्त जीवन, जीवन में तृप्ति नहीं है तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ये अंडरलाइन करिए, वो जीवन सफल नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कितने भी आप इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़ा घर बना लो, जो करना कर लो, आपका दिल कहता है सच क्या है, दिल की गहराई में जो तृप्त नहीं है, वो सच्चा प्यार नहीं है, आपका जीवन सफल नहीं है। जी लिया आपने, दिन गुजार लिया, पर सफल नहीं रहा। जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, अभी पहचानेंगे कैसे परमात्मा को, हम भी चाहेंगे अभी पहचानना कैसे एक किसी को भी पहचानने के लिए पांच चीजें जरूरी हैं। एक नाम, उनका नाम क्या है, रूप, देश, काल, कर्तव्य, ये पांच बातों से एक व्यक्ति को पहचाना जा सकता। अब आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा का पिता है परमात्मा। तो जैसे अब एक हाथी है, हाँ जी, हाथी, हाथी के माँ बाप कैसे होंगे, कैसे होंगे, पक्का पक्का हाथी जैसे होंगे कि शेर जैसे? शेर के माँ बाप कैसे होंगे? हाँ, चींटी के माँ बाप कैसे होंगे? मच्छर के माँ बाप? इंसान के माँ बाप? आत्मा के माँ बाप? सिंपल, इसमें दो राय नहीं है। लोग इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं, इतनी सिंपल लॉजिक है ये, सो सिंपल। क्यों हम भगवान को अपना अपने कल्पना से देखते हैं? हम अपने हिसाब से भगवान को बना लेते हैं। भगवान तो सारी दुनिया को रचने वाला, और हम भगवान को ही रच डालते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला हम भगवान को बना देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में दो बातें लिखी हुई है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजयोग के संबंधित। एक वो है, अर्जुन जब तक तुम्हारे मन में सारी शंकाएं, ऑल क्वेश्चंस, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों से आप आपका मन फारिग हो जाएगा, तब तुम्हारा मन मुझसे लगेगा। नंबर वन। सेकेंड बात कहा गया, मैं जो हूं, जैसा हूं और जहां हूं, ये लाइन अंडरलाइन ध्यान से सुनेंगे, मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं जहां हूं, तुम मुझे वैसा ही वही याद करो, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मेथड है, हर चीज की एक विधि होती है, विधिवत की हुई चीज सफल रहेगा, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस कमरे में आने के लिए 5 दरवाजे हैं। आपको लगता है भी खिड़की भी तो है, हम खिड़की से आएंगे। आओ भले, पहुंचना ही है ना, हम खिड़की से आएंगे, छत से आएंगे, पर विधि नहीं है वो। दैट्स नॉट द, छत से आने वाले, खिड़की से आने वाले को क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। आएंगे जरूर, पर आपका सम्मान क्या होगा? चोर का। आप मुख्य द्वार से प्रवेश करें, मेहमान माना जाएगा, आपका आदर सत्कार होंगे। विधि से सिद्धि। परमात्मा को जैसे आप चाहो वैसे याद करो, वो राइट नहीं है। जैसा वो हैं, जहां वो हैं, वैसा ही याद करना विधि है। और खुद को भी जैसे आप चाहें वैसे अपने को समझ लो, गलत है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दुनिया में एक और संबंधों में, आपसे संबंधों में प्रॉब्लम की एक और वजह है, और वो वजह है लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। व्यक्ति कब अपने आप में विश्वास, अपने आप से प्यार, अपने आप से सम्मान करना भूलता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अपने आप से विश्वास करना सीखे सबसे पहले। जो इंसान खुद को विश्वास नहीं करता, वो भगवान को क्या विश्वास करेंगे? सामने दिखने वाले को क्या विश्वास करेंगे? मैं खुद हूं, मैं अपने आप से विश्वास नहीं कर सकती, जो दिखने आंखों से नहीं दिखता है उससे कैसे विश्वास करेंगे? या तो अंधविश्वास करेंगे, या तो विश्वास ही नहीं करेंगे, तो गलत हो गया ना। तो जिएंगे किस आधार पर? ट्रस्ट, फेथ, सारी दुनिया विश्वास के ऊपर टिका है। वही नहीं रहे तो बाकी यू नो फाउंडेशन ही नहीं रहा तो चलाएंगे कैसे जीवन? और उस सेल्फ रिस्पेक्ट, आप भी जो लोग आपको कहते हैं कि आप ऐसे हो, यदि कोई कह दिया कि इस शॉल में बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको लगता है बड़ा अच्छा लगता है, लगता है ना, क्या इस ड्रेस में आप लग रहे हो, बहुत अच्छा, एंजल लग रहे हो, आपको लगता है अरे बाप रे मेरे को पंख भी लग गया, मैं तो उड़ रही हूं, और दूसरा कहे बकवास लग रहा है, क्या है ऐसे, आज बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप तो एकदम भूतनी लग रही हो, तो आपको कैसा लगे? अरे एकदम वो पंख भी कट गया, एक मिनट में हम नीचे भी गिर गए। तो हम एक मिनट में हमारी फीलिंग्स किसी के कहने पर, अब अपने व्यक्तित्व में इतना बदलाव, अपने आप के बारे में आप इतना जल्द ओपिनियन बदल लेते हो, गलत। इट मीन्स आप भी, आप जो है जैसा है, अब अपने आप को समझा ही नहीं, इसलिए आप दूसरे व्यक्ति को भी नहीं समझते, भगवान को भी नहीं समझते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई क्या भी कहे, मुझे मालूम होना चाहिए मैं कैसी लग रही हूं। आप बोल दो आप देवता लग रही हो, आप एंजल लग, फरिश्ता, मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि मैं फरिश्ता लग भी रही हूं कि नहीं लग रही हूं। आप जितना भी बोल लो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ना। आप कहेंगे आप बकवास लग रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कैसी लग रही हूं, आई नो। तो आपके ओपिनियंस मेरे मन पर असर नहीं करेगा। अब हम बहुत ज्यादा लोगों के लिए जीते हैं, खाते हैं, पहनते भी लोगों के लिए, हाँ, हर बात औरों के, अपने लिए तो जीते ही नहीं है, अपने अनुसार नहीं जी पाते, क्योंकि वो ओपिनियंस इतना असर मन पर, इतना प्रभाव करता है और मन को ऐसा चेंज कर लेता है। इसलिए अच्छी चीजों का प्रभाव मन पर कम पड़ता है और गलत बातों का मन पर ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि मन इस ओपिनियन से घिर के इतना कमजोर हो गया है, इट कांट स्टे इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। यह सबसे पहली बात, परमात्मा जैसे आत्मा बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। परमात्मा वो है जो जन्म मरण से अतीत है, वो भी हम जैसे जन्म मरण में आए, फिर वो हमको जन्म मरण से मुक्ति कैसे देंगे? वो भी जन्म लेंगे, उनके माँ बाप होंगे, फिर उसको भी दर्द होगा, वे उनको दर्द से मुक्ति कौन दिलाए? इसलिए परमात्मा इंसानों की तरह, हम सब आत्माएं जन्म मरण में आती है। आत्मा और परमात्मा में भी फर्क क्या है? आत्मा भी ज्योति स्वरूप, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, फर्क क्या है? हम सब आत्माएं, दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, सब जन्म मरण में आते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पर एक परमात्मा, इनको परमात्मा क्यों कहते हैं? है वो भी आत्मा, वो भी ज्योति स्वरूप, लेकिन ये आत्मा परम है, यानी श्रेष्ठ है गुणों में, शक्तियों में, पर और ये जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए उनको अजन्मा कहते हैं। और जो जन्म नहीं लेते हैं उनको शरीर नहीं मिलेगा, इसलिए परमात्मा निराकार है। निराकार का मतलब ये शरीर का आकार नहीं है। निराकार का मतलब ये नहीं है उनको कोई आकार ही नहीं है। नाम है तो रूप भी है, रूप है तो नाम जरूर होंगे, नाम और रूप है तो कर्तव्य भी होंगे, एग्जिस्टेंस है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके प्रयोजन, इसके कुछ तो होंगे ना। तो परमात्मा निराकार का मतलब ये शरीर का आकार नहीं है, स्त्री का आकार, पुरुष का आकार, ऐसा आकार नहीं है। निराकार का मतलब वो ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। दिख रहे हैं ना यहाँ बिंदु स्वरूप, बिंदु दिख रहा है यहाँ पे, ये बिंदु स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। इसलिए इतनी सी ज्योति की पूजा कैसे की जाए? इसलिए भक्ति में बड़ा लिंग का रूप दे दिया। लिंग का भी कोई आकार नहीं है ना, वैसे इंसान का आकार नहीं है ना, शिवलिंग कहते हैं ना, लिंग रूप। बड़ा रूप इसलिए दिया ताकि वो पूजा कर सके, उसमें इन दूध वगैरह जो डालते हैं वो सब कर सके, अपने अपने जो कर्मकांड जो दुनिया में करते हैं वो कर सके। बाकी इतना बड़ा रूप नहीं है परमात्मा का, है ज्योति स्वरूप। और परमात्मा ही आत्मा के लिए माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, स्वामी है, साथी है, हाँ जी, बच्चा है, जो संबंध आप समझो, जो संबंध चाहो, वो सारे संबंधों का सुख, सारे संबंधों का प्यार जो अनकंडीशनल है, जो शुद्ध है, रूहानी है, जो स्थाई है, जो सच्चा है, वो प्यार देने वाला प्यार का सागर है वो। यदि जीवन में ये परमात्म प्यार की अनुभूति कर ले, परमात्मा आनंद का सागर है। देखो सुख का ऑपोजिट वर्ड क्या है, दुख है। खुशी ऑपोजिट वर्ड है हा? लेकिन आनंद का ऑपोजिट वर्ड है, आनंद का ऑपोजिट वर्ड क्या है? इस दुनिया में सुख मिलेंगे, खुशी मिलेंगे, लेकिन आनंद सिर्फ परमात्मा के पास है, इसलिए परमानंद कहते हैं। जो भी सन्यास करते हैं ना, साधु संत सन्यास लेते हैं, वो अपना नाम बदलते हैं, विवेकानंद, हाँ, ब्रह्मानंद, सरस्वती, आनंद लगाते अपने नाम के साथ, क्योंकि उनके जीवन के जो उद्देश्य है वो आनंद की प्राप्ति है। तो उनको लगता है हम घर बार में रहेंगे, आनंद तो मिलेंगे नहीं हमको, हम इन्हीं बाल बच्चे पत्नी पति इनके इस चक्कर में पड़े रहेंगे, आज सब्जी खत्म हो गई, आज चाय खत्म हो गई, आज शक्कर इसी में पड़े रहेंगे, हाँ जी, तो आनंद की प्राप्ति होंगी नहीं, इसलिए छोड़ो ये सब, जाओ जंगल। पर परमात्मा कहते हैं भाई तुम जंगल जाने की जरूरत नहीं, उधर ही रहो जहां पर तुमको बिठाया गया, और लोगों को छोड़ने की भी जरूरत नहीं, उन्हीं लोगों के साथ रहो जिनके साथ आप रहे हुए, क्योंकि वही आपके लिए सही है। छोड़ना हमको कुछ नहीं है, वहां रहते इस आनंद की प्राप्ति वो सहज है। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल बात बताऊं, जिस चीज को भूलना हो, भूलने के लिए आप उस चीज को छोड़ करके दूर जाएंगे ना और ज्यादा याद आएगा, वहीं रहेंगे तो कम याद होगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। आप घर में रहेंगे ना, बच्चों को देख देख के आपको कहते हैं जाओ तुम स्कूल जाओ, तंग हो जाता है। पर स्कूल से बच्चा देर बहुत देर तक नहीं आएंगे ना, काफी देर तक यू नो वो, तो फिर आपकी आपको देखने की, अभी आप लोग यहाँ आए हैं, कल से आए हुए हैं ना, तो आप लोगों को घर की याद आ रही है ना, सच बताओ किस किस को याद आया घर की याद, किस हाथ उठाओ, देखा, अच्छा किस किस ने घर में फोन किया, अपनों को किस किस ने फोन किया, हाथ खड़ा करो, सब उठाएंगे, तो बात वही है ना, वहां रहेंगे तो आप फोन नहीं करेंगे, वहां से यहां दूर आए हो बार बार फोन करेंगे, घर में रहेंगे खाया पिया पूछेंगे नहीं, पर यहां आ गए ना, अभी दूर हो गए ना, शरीर से दूर है ना, तो अच्छा तुम उठे, तुम खाए, तुम गए, पूछेंगे, सही बात है ना। तो दूर रहने से याद ज्यादा आती है, ये साइकोलॉजी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम कहीं जाओ नहीं, घर में बैठे रहो और मुझे याद करो, बस सिंपल है ना ये, वो भी संभालो ये भी संभालो। अच्छा, बिंदु स्वरूप जन्म मरण से अतीत है। दूसरी बात, परमात्मा को अभोक्ता कहते हैं। अभोक्ता माना न सुख दुख निंदा स्तुति का अनुभव होता है। जैसे मैंने कहा आप फरिश्ते हो, आपको खुशी हुई, यानी मैंने जब आपको कहा फरिश्ता, आपने इसको स्वीकार किया, तब आपको खुशी हुई। जब मैं आपको कहती हूँ आप बुद्धू है, आप अच्छा नहीं, इसको भी आपने स्वीकार किया, तब आपको दुख लगा। तो दुख और सुख महसूस तब होगा जब आपने स्वीकार किया। परमात्मा अभोक्ता है, वो कुछ स्वीकार नहीं करता। आप भगवान के सामने बोलो तुम पत्थर हो, उसको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तुम कई लोग जब बोलते हैं, भगत जाते हैं ना, तो मेरे प्रॉब्लम नहीं सुनता है, तुम पत्थर के पत्थर हो, तुम भगवान क्या क्या है, उसको कोई गुस्सा थोड़े आएगा, क्योंकि बच्चा बोलता है, कोई माँ बाप को थोड़े गुस्सा आएगा है। तो आप जाकर के बड़ी महिमा करो भगवान को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि वो स्वीकारता नहीं है। आप प्रसाद रोज रखते हो, खाता है भगवान? कौन खाता है? हाँ, यदि वो खाना शुरू करे कोई नहीं रखेगा। नहीं खाता इसलिए रखते हैं, नहीं लेता इसलिए देते हैं। वो ओश बहुत होशियार है, वो भगवान बहुत होशियार है, क्योंकि बच्चे तो उन्हीं के ना, तो मालूम है मेरे बच्चे भी होशियार है भाई। खाना शुरू करेंगे ये लोग देना बंद करेंगे, इसलिए खाओ नहीं, अपनी इज्जत रखो भाई। ये लोग अपना काम कराने के लिए बोलते हैं, हम 100 नारियल देंगे। अच्छा, सारी दुनिया को बनाने वाले के पास 100 नारियल नहीं होगा? अब बताओ, हम भी कितने बुद्धू हैं? हम अपना बाल कटवाएंगे, आप मेरे काम करा, अब बाल लेके क्या करेंगे भाई? यू सी, हम सिली सिली इस तरह के भगवान के सामने करते, वो आप ना भी करेंगे ना भी देंगे तब भी करने वाला करेगा, देने वाला छप्पड़ फाड़ के देगा। एनीवे, अभोक्ता, सुख दुख से वो भोक्ता नहीं, सुख नहीं भोक्ता, दुख नहीं भोक्ता। और परमात्मा अकर्ता है। अकर्ता माना, अकर्ता का मतलब ये नहीं कि कोई कर्म नहीं करता। परमात्मा ऐसा कर्म नहीं करता जिससे कर्म का बंधन बने। हम सब कर्मों के बंधन में फंसे पड़े हैं, न छोड़ सकते न रह सकते हैं जी, फंसे पड़े हैं। आप सभी को भी ऐसा लगता है ना, क्या करें, छोड़ नहीं सकते, रह नहीं सकते, इसको कहते बंधन। यदि आपको ऐसा फीलिंग आया ना, माना बंधन में पूरी तरह से यहां तक फंसे पड़े हो। अच्छा भी लगता है, अच्छा नहीं भी लगता है, ऐसा है, खट्टा मीठा जिसको कहें बंधन। तो परमात्मा ये सारे बंधनों से मुक्त है। हम अच्छा बुरा कर्मों का फल हमें मिलता है। परमात्मा ऐसा कर्म नहीं करता है जिसका फल उनको भुगतना पड़े। और ये यूनिवर्सल लॉ है, जो करेगा, कोई नहीं संसार में कोई नहीं इससे भाग सकता। और परमात्मा सर्वधर्म मान्य है। मान लीजिए भगवान को एक रूप दे दे तो 10 लोग उस रूप को मानेंगे, उस नाम को मानेंगे, हाँ जी, और कुछ 10 लोग कुछ और नाम रूप को मानेंगे, कुछ और नाम को मानेंगे। अब हिंदू धर्म में ही देखिए ना, 10 लोग कृष्ण को मानते, 10 लोग राम को मानते हैं जी, 10 लोग विष्णु को मानते, 10 लोग दुर्गा को मानते, 10 शेरावाली को मानते हैं ना, ये मान्यता अपनी अपनी है। पर जो कृष्ण को मानते हैं वो राम को नहीं मानते, कहता हमारा भगवान बड़ा है, ये तो लड़ाई हो गई ना, तो क्या भगवान लड़ाई कराएगा? इसलिए परमात्मा इन सब बातों से अतीत है, सर्वधर्म मान्य। अब कोई रूप देंगे तो सब नहीं मानेंगे, निराकार स्वरूप, संसार के सब धर्म मानते हैं, जितने भी दुनिया में धर्म है ना, निराकार रूप से सब मानते, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे हिंदू है। हिंदू के भी जितने भी अब धर्म तीर्थ स्थानों में चले जाएं, वह शिवलिंग ही है, 12 ज्योतिर्लिंगम जिसको कहते हैं, मेन तीर्थ स्थानों पर शिवलिंग ही रखा गया है। और वैसे भी कोई भी मंदिर हो वहां शिवलिंग जरूर होगा। आप देख लीजिए, आप गणेश जी के मंदिर में जाओ, हनुमान के मंदिर जाओ, शिवलिंग जरूर छोटा सा होगा, क्योंकि वह सब आत्माओं का पिता है, देवताओं के भी पिता है, धर्मात्मा, देवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, सब आत्माओं के वो पिता है। देवात्मा भी आत्माएं हैं, दिव्य गुण जिनमें है देवात्माएं कहते हैं, धर्मात्माएं जो धर्म स्थापन करते हैं उनको धर्म पिता या धर्मात्माएं कहते हैं, पुण्यात्माएं जो पुण्य काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, महात्माएं जो एक देश के लिए, दुनिया के लिए एक महान कार्य करते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते वो महात्मा कहलाएंगे। पापात्मा तो जो गलत काम करते, पर है तो सब इंसान है, मनुष्य, पर उनके गुण और कर्म अनुसार वो पापात्मा पुण्यात्मा महात्मा कहलाएंगे। पर ये सभी जन्म मरण के चक्र में आने वाले, पर परमात्मा इन सब आत्माओं का पिता जो जन्म मरण में नहीं आते। कृष्ण भी जन्म लिए मर गए, राम जी ने भी जन्म लिया उनकी मृत्यु हुई, क्राइस्ट भी जन्म लिया उनकी मृत्यु हुई, बुद्धा जन्म लिया मृत्यु हुई, ये सब जन्म मरण में आने वाले, कर्म अनुसार उनके कर्मों के फल में बंधे हुए, पर परम आत्मा इन सबसे ऊंचा है। हम सब आत्माओं को मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता है। और नाम क्या दें, क्योंकि कई बार नाम से भी लोग धर्म को जोड़ देते हैं, ये नाम होगा तो हिंदू का, ये नाम होगा क्रिश्चियन का, ये नाम होगा तो मुस्लिम का, पर परमात्मा का जो नाम है वो कल्याणकारी है, वो कोई भी हो, बुरा करने वालों को भी अच्छा या कल्याण करने वाला, अपकारों का भी उपकार करने वाला, वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो मंगल मूर्ति मंगलकारी हैं। इसलिए संस्कृत में कल्याणकारी मंगलकारी का एक बहुत शुभकारी का एक बहुत सुंदर शब्द है शिव। शिव माना मंगलकारी कल्याणकारी, शिव माना शुभ, शुभ को शिव कहते हैं। शिव शिव बोलो भाई, शिव शिव बोलो मतलब शुभ शुभ बोलो, शुभ। और जो सबसे ज्यादा बेदाग सुंदरता हो उसको शिव कहते हैं। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, क्योंकि सत्य भी शिव है, सुंदर भी शिव है। सुंदर माने ये सुंदरता की बात नहीं, क्योंकि उनको तो शरीर ही नहीं है। सुंदरता माना जो परम पवित्र हो, एब्सोल्यूट प्योर, कोई ऐसा दाग भी ना हो, वो कितना सुंदर होगा। कोई बुराई का, कोई अपवित्रता अशुद्धि की जरा सा दाग ना हो, वो परम पवित्र इसको कहते हैं। और ऐसे परमात्मा का दिल कितना सुंदर होगा जरा सोचिए, अशुद्ध तो है ही नहीं, अशुभ तो दूर दूर तक नहीं। ऐसे परमात्मा के हम संतान, बाबा हम कहते हैं, हम परमात्मा नहीं कहते हैं, हम बाबा कहते हैं, क्योंकि वो बाबा है ना, आत्मा के लिए पिता है ना, माता है। परमात्मा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो प्यार का सागर है, सर्वशक्तिवान है, परमात्मा है, वो रचयिता है, सृष्टि करता है। ऐसे परमात्मा के हम बच्चे हैं। हम कौन हैं? कौन हैं हम? आप सो रहे, जाग रहे, एक बार खड़े हो जाए, सब उठ के खड़े हो। हाँ, सब उठ के खड़े हो, जो सो रहे हैं वो भी खड़े हो जाओ भाई, जगाओ आसपास। हाँ, समय ऐसा है ना, नींद का समय है ना। हाँ, जरा हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो, थोड़ा नीचे कर लो, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो। हाँ, सुस्ती भागी भागी सुस्ती। हाँ, थोड़ा हलो हलो कर लो। हाँ, चलो अभी बैठ जाइए, आसपास में थोड़ा हिला डुला दिया करें। हाँ, और सीधा बैठे, ऐसे ऐसे आराम से बैठेंगे ना, नींद आ जाती है। ओ माता जी, आराम से बैठो। हाँ, सीधा बैठ, सीधा होके बैठिए, आंखें खोल के बैठिए। इसलिए राजयोग में आंखें खोल के बिठाया जाता है, क्योंकि बाबा को मालूम है मेरे बच्चे सो जाते हैं। हाँ, इतने जन्म बेचारे, इतना काम करके 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 इतने सुस्त हो गए ना, थक गए बेचारे, थक करके सो जाते हैं। इसलिए कहते बच्चे, जब मेरे को याद करेंगे ना, तुम आंखें खोल के बैठो, सो नहीं जाओ। ओके, हम किसके बच्चे हैं? ले, वही बात हो गई। परमात्मा कौन है? पिता है ना वो मेरा, तो हम किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। और वो बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर, जितने भी ये सर्व गुणों के वो सिंधु हैं, है बिंदी, इतना भरा हुआ। और ऐसे बाबा के बच्चों में भी इतना सब भरा है, हम यूज ही नहीं करते। अब आपके बच्चों में आपके थोड़ा थोड़ा गुण तो हो है ना, होते हैं ना कि नहीं होते हैं? कौन आप में से है जो आपके बच्चों में आपके गुण है? हाथ खड़ा करो। क्यों भाई, ये माताएं आपके बच्चे नहीं है तो आपके बच्चों में आपके गुण नहीं है? चलो आपके नहीं है तो आपके पति के होंगे या आपके पत्नी के होंगे। भाई उठाओ, आपके बच्चों में आपके गुण किस किस के हैं? आपके गुण हैं? डाउट है? डाउट तो नहीं। चलो, तो जब आपके बच्चों में आपके ये ना माता पिता कोई भी हो, आपके गुण हैं, बल्कि आपके आपके पिता के भी गुण आपके बच्चों में होंगे, दादा के भी कई गुण होते हैं, इसको कहते जीन्स, जीन्स कहते हैं ना। तो जब आपके बच्चों में आपके गुण हैं, तो हम बच्चों में शिव बाबा आत्मा के हम सब आत्माओं में शिव बाबा का गुण नहीं है? कहाँ गया? गुम हो गया? बड़े शान से कहते हो आप, गुम हो गया। कहाँ गुम किया? हाँ? कहाँ है? लेयर चढ़ गई है। अच्छा, तो आप दिया नहीं ड्राई क्लीन में? हाँ? हम सब में वो सारे गुण हैं जो बाबा में हैं। हम बाबा के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे, आनंद के सागर, वो सुख के सागर के बच्चे, तो दुखी क्यों हैं? सागर जितना सुख है हमारे में, सागर जितना हमारे में प्यार है, कहाँ गया वो प्यार आपके दिल में? सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है दिल में, क्योंकि हमने नफरत भर ली, दुख भर लिया, नेगेटिव भर लिया। हम भूल ही गए हम किसके बच्चे हैं। अब राजा का बच्चा भीख मांगे कैसा लगेगा ना, और सुख सागर के बच्चे रोएं कैसा लगेगा? बाबा भी ऊपर से देख रहा है क्या मेरे बच्चों के हालत है। इसलिए तो मैंने कहा, वो देख देख करके बोला, भाई तुम मास्क तो लगा, तुम हंसती तो नहीं, मुस्कुराती नहीं, रोते रहते सारा दिन, आधा चेहरा तो ढक के रख, नहीं तो बदनामी तो मेरी होगी ना, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुनिया है, क्या हाल है। बाबा के सारे जो गुण हैं, शक्तियां हमारे में हैं, हम सिर्फ भूल गए हैं। अब योग माना बस यही याद करना, मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं, और कल्याणकारी नाम ही कल्याणकारी है तो कभी अकल्याण करेगा? करेगा? अच्छा, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है वो कौन करता है? कौन करता है? आपके घर में कुछ अशुभ हो गया वो कौन करता है? आवाज से बोलो, गुड़गुड़ नहीं करो। हाँ, आवाज से बोलो, कौन करता है? आपके अपने कर्म आपके सामने आता है, जो करेगा आज नहीं तो कल, कोई अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। अरे देवता ही नहीं भागे, भाग पाए, हम क्या भाग सकेंगे? हैं जी, देवताएं, आपको मालूम है ना श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसी हुई? उसको भी पैर में वो लगा, तीर लगा। वो क्यों लगा उसकी कहानी, क्योंकि इसने तीर मारा था, इसके जो फल है उनको भी तीर से मरना पड़ा। राम को वनवासी बन गए, कोई कर्म से भाग नहीं सकता। तो हम क्यों भागे? हम क्यों अपने कर्मों से भागे? हम क्यों अपने कर्मों से डरे? डरे नहीं, हमेशा जब भी अपने जीवन में कोई ऊपर नीचे होती है, सिर्फ इतना याद करो, मेरा साथ कौन है, मेरा पिता कौन है, मैं सर्वशक्तिवान पिता की मैं संतान हूं, क्यों मैं डर रही हूं? डरना बिल्कुल नहीं, जो जो डरेगा हाँ डरो नहीं, कभी नहीं, डर मन में कभी नहीं आना चाहिए, उलझन कभी मन में नहीं आना चाहिए। एक एक कबूतर कबूतर था, वो खा रहा था अपना दाना चुग रहा था, कबूतर जो है ना दाना चुग रहा था बड़ा मजे में धूप में बैठ करके ना वो दाना चुग रहा था। सामने से एक मोटी सी बिल्ली आ गई, उसको लगा बड़ा डर, बहुत डर गया। उसने कहा अब तो वो खा जाएगा मुझे, ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। तो उसको लगा इतने डर में आंखें बंद कर ली। अबे तुम आंखें बंद करेंगे बिल्ली तो खाएगी, पर ये भूल गया भाई मेरे को तो पंख, में उड़ सकती हूं, बिल्ली को तो कोई पंख नहीं है ना, वो मेरे पास जैसे आई मैं तो उड़ सकता। वो अपने पंख को ही भूल गया, वो भूल गया मैं उड़ सकता हूं। तो डर में वो ऐसा अंक, तो बिल्ली आई वो खा गया। अब हम भी उड़ सकते हैं, समस्याएं हम ये सोच सकते भगवान मेरे साथ है, हम अपनी अच्छाएं अपना जो जो हमको बचाने वाले को ही भूल जाए, हम डर में अपनी आंखें बंद कर ले, वो तो हमारे ऊपर हावी तो होनी है। कबूतर और हमें फर्क कोई है तो कबूतर कौन है? कबूतर कौन है? बड़े अच्छे बोल रहे हो, हम कबूतर है? तो हमको कबूतर थोड़ी बनना है। हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे हैं हम। तो कभी भी ये नहीं, भगवान को दोष कभी नहीं देना, भगवान के कारण ये हुआ नहीं, वैसा अमंगल कार्य भगवान का कर्तव्य नहीं है, वो शुभ कार्य है ना, वो बिगड़ी को भी बनाने वाला। वो कैसा, आप अपने बच्चों के लिए बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे? जब आप एक इंसान साधारण इंसान होकर के अपने बच्चों की हमेशा भलाई चाहते हैं, तो ये तो भगवान है भाई, परमात्मा है, वो कैसा गलत काम करेगा कराएगा? ये कभी ऐसा सोचना भी एक महापाप है। भगवान की कोई भी गलत हम सोचते हैं, ये पाप में गिना जाएगा, ये ग्लानी है, भगवान की परमात्मा की ग्लानी करते करते ही हम यहां आ गए। पत्थर में भी भगवान है, उधर भी भगवान है। अरे ऐसा बोलना तो गलत है ना। यदि मैं कहूँ आप जहां जहां घूमते रहते हो, हाँ सड़क सड़क में घूमते, आपको अच्छा लगेगा ऐसे? आप सड़क छाप क्या बोलते हैं उसको, यो एवरीवेयर, यू नो वॉन्डरिंग एवरीवेयर, आवारा, हाँ जहां देखो तो तुम ही दिखते हो घूम, तो ये शब्द हम भगवान को कहते हैं, तो गलत नहीं हुआ भाई? हम एक एक ऊंचे घराने के होंगे, उनके अपने महल एक जगह होगी, वहां से वो सब कंट्रोल करेंगे। देश का प्रधानमंत्री भी एक जगह बैठ करके सारा देश को चलाता है, तो क्या भगवान एक जगह पर बैठ के दुनिया नहीं चला सकता? उसको इधर उधर उधर रहना क्या जरूरी है? ये बदनामी है परमात्मा के, भी पाप है, पाप में गिना जाता है। जैसे मुझे आत्मा का घर, सवेरे सुना ना, परम धाम है, माता पिता बच्चे जहां रहते उसको घर कहते हैं। तो मेरा घर परम धाम, क्यों वो घर है? क्योंकि मेरा माता पिता शिव बाबा वहां है, जो मेरा माता भी है तो पिता भी है। परमात्मा परम धाम निवासी है, परम धाम में रहता है, जो सूर्य चांद से भी ऊपर उनका धाम है। वहां जब हम भी ये शरीर छोड़ेंगे, हम भी वही जाएंगे, वो हमारा भी घर वही है। इसलिए कभी भी ये है, जो है जैसा है, हमको वैसे ही याद करना। जो रूप आप चाहो उस रूप में याद करने से प्राप्ति नहीं होगी। अपने को भी आत्मा बिंदु समझकर, शिव बाबा को भी बिंदु समझकर, सिर्फ आत्मा समझकर नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा समझकर, ये अंडरलाइन करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं शुद्ध हूं, शिव बाबा भी परम पवित्र है, वो प्यार का सागर, शांति का सागर समझकर, शांति धाम में याद करना योग की असली विधि है, तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब जो सोचो हाजिर। जैसा सोचो हाजिर, क्योंकि आपके संकल्प में शक्ति भरती है। मन आपका दृढ़ होता जाएगा, मन आपका शक्तिशाली बनता जाएगा, फिर वो मन अशुद्ध आपका भी नहीं सोचेगा, क्योंकि हम कल्याणकारी पिता के हम संतान हैं। जब मेरे पिता के मन में कोई अशुद्धि नहीं है, मेरे मन में अशुद्धि हो सकता? हो सकता? तुम्हारे भी मन में अशुद्धि नहीं होंगी। फिर हम हमारे मन में ये राग द्वेष और किसी के प्रति चुगली निंदा या किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष, ये सब भाव हमारे मन से निकल जाएगा। हमारे जीवन को जो गर्क करके रखे हैं, यही भाव है बस, और कुछ नहीं है। हम राग द्वेष से भी ऊपर उठ जाएंगे, हम अपने कर्म बड़े प्रेम से करते जाएंगे। कई लोगों को प्रेम और मोह में अंतर भी नहीं पता। आप जिस जो समझते हैं हमको बहुत प्यार है बच्चों से, पति पत्नी से प्यार है, बच्चे माँ बाप से प्यार है, माँ बाप, ये प्यार नहीं है, मोह है। और मोह माने स्वार्थ, मोह अशुद्ध है। इसलिए मोह हमेशा दुख देता है, हमेशा दर्द देता है, हमेशा डर देता है। जहां मोह है वहां डर है। यदि आपके मन में कोई भी बात का डर है, समझ लो मोह है वो, क्योंकि जहां मोह होगा वहां डर होगा। मोह नहीं है तो डर हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने मन बाबा को याद करते करते, बाबा से वो प्यार की अनुभूति करते करते, बाबा से वो आनंद की अनुभूति, वो आनंद में इतना सुख है वो वर्णन नहीं कर सकते, शब्द नहीं है उसके। जीवन ऐसा लगेगा कि बस जो मुझे पाना था वह यही था। वो यदि इंसान एक क्षण के लिए भी अनुभव कर ले, जीवन सार्थक हो जाए। तो ये इसको कहते राजयोग। ये अनुभूति परमात्मा से पाना ही राजयोग है। ये अनुभूति, ये सुख, ये आनंद इस संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई इंसान ये सुख नहीं दे सकता। कोई इंसान ऐसा परम पवित्र शुद्ध प्यार नहीं दे सकता। तो इस प्राप्ति को प्राप्त करना ही राजयोग है। इस शिव बाबा के साथ हमारा मन से याद करना ही राजयोग है। योग शब्द भी छोड़ दो, योग भी, योग शब्द, एकाग्रता, ये सब सारे शब्द भी मन को कंफ्यूज करता है। हमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना, मैं आत्मा शिव बाबा को याद करना, जैसे हम बच्चे को याद करते हैं, हम औरों को याद करते हैं, हम शिव बाबा को याद करना। जैसे शिव बाबा को याद किया, मन अपने आप परम धाम चला जाता है। ठीक है? ओके ओके बैठिए। ओके लेट मी एक्सप्लेन। ये बड़ा सिंपल है। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप है, ठीक है? ओके अच्छा, कर्म करने वाली आत्मा है, सारा कर्म आत्मा करती है। जब आत्मा सोचती है उसको मन कहा जाता है, जब आत्मा कोई निर्णय लेती है उसको बुद्धि कहा जाता है। बस करती तो आत्मा है, पर वो क्रिया को वो कहा बुद्धि और मन कहा गया। जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, मन है। जब डिसीशंस लेते हैं, आप एनालाइज करते हैं, इसको बुद्धि कहा जाता है। पर है तो आत्मा, दोनों मन और बुद्धि है आत्मा में ना, आत्मा के अंग है। अब क्या हाथ कैस कहाँ है, पैर कहाँ है, भाई आंख कहाँ है, सब है। इसको चेहरा कहते, फॉर एग्जाम्पल इसको चेहरा कहते। चेहरा सिर्फ आंख है? चेहरा सिर्फ कान है? चेहरे में सिर्फ नाक है? नहीं, ये सब मिला करके चेहरा। ऐसे ही मन और बुद्धि और संस्कार, ये मिला करके आत्मा। क्योंकि जब सोचती है आत्मा, जब सोचती है जब निर्णय करती है, सो इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्शन. थैंक यू. शांति से एक मिनट बैठेंगे, आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं, आराम से जैसे आप बैठ सको. और आंखें खुली रखें, कोई आंखें बंद नहीं करेगा, सब आंखें खोल के बैठो, क्योंकि याद ही तो करना है ना. कोई स्ट्रेस नहीं, कोई नो स्ट्रेस, रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स रखो, पर सीधा बैठो, अलर्ट बैठो. आंखें खुली रखें, सीधा देखें. अब जो भी आपके सामने बैठे हैं या ब्रह्मा बाबा के भी चित्र आपके सामने होंगे, आपको देखना मस्तक के बीच में है, पर याद जो करना है वो मन से, बुद्धि से, क्योंकि मन बुद्धि कहां भी जा सकता है. अपने मन और बुद्धि को मस्तक के बीच में एकाग्र करें. मस्तक के बीच विराजमान अद्भुत शक्ति को महसूस करें. वो अद्भुत शक्ति मैं हूं, आत्मा. मेरा रूप ही शांति है. मैं शुद्ध हूं, आनंद स्वरूप हूं. यही मेरा असली रूप है. मैं इस शरीर का मालिक हूं, पर इस शरीर से भिन्न. सूक्ष्म शक्ति, दिव्य रूप है मेरा. अब अपने मन और बुद्धि को इस संसार से दूर ले चलते हैं, जो सूर्य चांद से भी अतीत, सितारों से भी पार, परम धाम. जहां मेरा प्राणेश्वर पिता परमात्मा का वास भी है, जैसे मैं आत्मा एक दिव्य शक्ति ज्योति स्वरूप हूं, मेरा पिता परम आत्मा भी ज्योति स्वरूप परम शक्ति है. शिव बाबा कल्याणकारी मंगलकारी है. सर्व गुणों के सिंधु है, सर्वशक्तिवान है. मेरे रक्षक है, मेरे साथी है. आज मैं कितना ना खुश हूं, मेरे
अनादि पिता, मेरा सर्वस्व, सारे कल्प में मुझे रक्षा देते रहे, मुझे संभालते रहे, मुझे पालते रहे, ऐसे मैं अपने पिता को जाना, पहचाना, समझा, कि मैं कौन हूं और किसकी संतान हूं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं कैसे आपके शुक्रिया अदा करूं? इस संसार में कर्म करते मैं आपको याद करूंगी, हर परिस्थिति में अपने आपके साथ महसूस करूंगी, हर कर्म में आपके गुणों को याद करूंगी, मेरा जीवन धन्य है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। कृपालु बाबा, आप कितना दयालु हैं, आप इतने स्वच्छ रूहानी प्यार के सागर हैं, जो मेरे दिल की गहराई तक मैं आपके प्यार को अनुभव कर सकती हूं। दिल ही दिल जो बाबा से आपको बात करना है वो आप कर सकते हैं, मन ही मन बाबा से प्यार करे, बातें करे। ओम शांति।